जमानों की उमंग बाब नंबर 33। मेरे भाई कौन हैं? जनाबे यूसुफ के बेटों को यीशु के काम से कोई हमदर्दी न थी। उसकी खिदमत और जिंदगी के बारे जो उन्हें खबरें पहुंचती, उनको सुनकर वो हैरान और मायूस हो जाते। उन्होंने सुना कि उसने तमाम रातें दुआ में गुजारने का अहद कर रखा है, जबकि दिन के वक्त उसे भीड़ घेरे रखती है और उसे खाने पीने का भी वक्त नहीं मिलता। उसके दोस्तों का ख्याल था कि वो दिन रात सख्त मुशक्कत की वजह से अपनी सेहत बर्बाद कर रहा है। जो उसका रोका फरीसियों के मुतालिक था, उसे वो समझने से कासिर थे और उनको डर था कि यीशु अपनी दलील और एतकाद को कायम ना कर सकेगा। उसके भाइयों ने उन सब बातों के बारे सुना और ये भी कि फरीसी उस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बदरूहों को इबलीस की मदद से निकालता है। यीशु की वजह से जो उन्हें बदनामी मिली थी, उससे उन्हें हजीमत उठाना पड़ी। वो जानते थे कि उसके काम और कलाम से किस कदर इस्तराब फैला है। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उसे इस तर्ज की खिदमत से बाज रखें। उन्होंने मुकद्दसा मरियम को भी ये सोचकर अपने साथ मिला लिया है कि उसकी मोहब्बत के जरिए वो जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और ये सब कुछ उस वक्त पेश आया जब यीशु ने एक शख्स में से बदरू को निकाला जो अंधा और बहरा भी था। फरीसियों ने यीशु पर इल्जाम लगाया, ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। मत्ती 34:9। मगर यीशु ने उन्हें बताया कि रूह कुदस के वस्फ को तुम इबलीस से मंसूब करते हो, लिहाजा तुम जानबूझकर अपने आप को बरकत के चश्मे से जुदा कर रहे हो। वो लोग जिन्होंने मसीह यीशु को पहचानते हुए उसके खिलाफ कुछ कहा, उनको तो शायद माफ किया जाएगा, क्योंकि रूह कुदस के जरिए वो शायद अपनी गलती को देख लें और तौबा करें। क्योंकि खता खा किसी किस्म की भी क्यों ना हो, जब कोई रूह उसका इकरार करके तौबा करती है तो यीशु का खून उस गुनाह को धोकर साफ कर देता है। मगर जो रूह कुदस के काम को रद्द कर देता है, वो जानबूझकर खुद को ऐसे मकाम पर रख देता है जहां ईमान और तौबा की रसाई नहीं। रूह के जरिया ही खुदा हमारे दिलों पर काम करता है। लेकिन जब कोई शख्स जानबूझकर रूह को तर्क कर देता और ये ऐलान करता है कि ये इबलीस से है, तो वो अपना राबता खुदा से मुनकता कर लेता है। रूहुल कुदस को रद्द करने का मतलब ये हुआ कि रूहुल कुदस को रद्द करने वाले के लिए अब खुदा कुछ नहीं कर सकता। फरीसी जिनको यीशु मसीह ने ये आगाही दी, खुद उस इल्जाम में ईमान नहीं रखते थे। उन्होंने मसीह यीशु के खिलाफ लगाया। उनमें एक भी ऐसा मोतबर फरीसी बुजुर्ग था जो महसूस न करता हो कि वो यीशु की तरफ खिंचा जा रहा है। उन्होंने अपने दिल में यीशु के बारे रूहुल कुदस की आवाज सुनी थी जो ये बता रही थी कि यही इसराइल अकदूस है, और रूहुल कुदस उन्हें तरगीद दे रहा था कि वो भी यीशु के शागिर्दों में शामिल हो जाएं। रूहुल कुदस की मौजूदगी में उन्होंने अपनी नजस बात को पहचाना और रास्तबाजी की ख्वाहिश जाहिर की जो वो खुद पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन उसे रद्द करने के बाद उनके लिए ये बड़ी बेइज्जती और शर्म का मकाम था। अगर वो अब से मसीह मऊत कबूल कर लेते, उन्होंने बेएतकादी की राह पर अपने कदम रख लिए थे और अब उनके लिए निहायत मुश्किल था कि अपनी खता का एतराफ करें। चुनाचे सच्चाई को नजरअंदाज करने के लिए उन्होंने यीशु की तालीम पर झगड़ा करने का तहिया कर लिया। उसकी कुदरत और रहम के सबूत पर वो बरहम हो गए। वो यीशु को मौजजात दिखाने और मनादी करने से भी बाज नहीं रख सकते थे। ताहम उन्होंने उसे और उसके कलाम को गलत रंग देने की हत्तलवुस कोशिश की। इसके बावजूद खुदावंद की रूह ने जो कायलियत बख्शी है उनका पीछा किया, गो उन्होंने उसके इल्तिमास पर कान न धरा। ये खुदा नहीं जो लोगों की आंखें बंद और दिल सख्त कर देता है। वो तो उन्हें नूर बख्शता है ताकि वो अपनी गलतियों की दुरुस्ती कर लें। वो महफूज पर उनकी राहनुमाई करता है, लेकिन उनकी आंखें उस वक्त अंधी और दिल सख्त हो जाता है जब वो रूहुल कुदस को रद्द कर देते हैं। खुदा के कलाम से इंसानी रूह में नूर चमकता है, लेकिन जब एक शुआ की तहकीर की जाती है तो रूहानी सूझ जुज़वी तौर पर बेहिस हो जाती है। यूं नूर की दूसरी शुआ जब जाहिर होती है तो उसकी तरफ इंसान शाज़ो नादिर ही तवज्जो करता है, लिहाजा तारीकी बढ़ती रहती है, यहां तक कि रूह रात की मुकम्मल अमलदारी में आ जाती है।
यही कुछ यहूदी बुजुर्गान के साथ हुआ। इस बात के तो वो कायल थे कि इलाही कुव्वत यीशु के हमरा है, मगर सदाकत की मुजाहमत करने के लिए उन्होंने रूहुल कुदस की खसूसियत को इबलीस से मंसूब कर दिया। ऐसा करने से उन्होंने खुल्लम खुल्ला गुमराही का इंतखाब किया। यूं इसके बाद इबलीस ने उनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। जहां रूहुल कुदुस के खिलाफ गुनाह के बारे यसू ने आगाही दी, वहां उसने फजूल गुफ्तगू के बारे भी फरमाया कि क्यों कि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। मत्ती 34:12।
कलाम हमारे चाल चलन की अक्कासी करता है, क्योंकि जिस तरह का हम कलाम करते हैं उसका हम पर असर होता है। बाज़ुकात इबलीस के उकसाने पर हसद और बदी का कलाम करते हैं। बेशक ऐसे कलाम के हम कायल नहीं होते, मगर याद रहे कि ऐसे कलाम के इजहार का हमारे ख्यालात पर जरूर असर पड़ता है। इसलिए इलाही कलाम के मुतल्लिक नुक्ताचीनी, सवाल या शक को शुभात बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। गैर मोहतात, गैर मुहज्जब और गुस्ताखाना कलाम और नुक्ताचीनी, ये सब के सब हमारे चाल चलन पर असरअंदाज होते हैं। बहुत से लोग इस तरह के खतरे से दोचार हैं, और एक वक्त आता है जब वो रूहुल कुदुस को रद्द देते हैं। यसु मसीह ने फरमाया, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाए। मत्ती 36:12-37। खुदावन यसु मसीह ने उनके लिए भी आगाही छोड़ी जो उसके कलाम से बहुत मुतासिर थे, जिन्होंने बड़ी खुशी से उसे सुना था, मगर उन्होंने खुद को रूहुल कुदुस के ताबे नहीं किया था, क्योंकि रूहुल कुदुस से मुजाहमत ही नहीं बल्कि उससे गफलत बरतने से भी रूह बर्बाद हो जाती है। यसू ने फरमाया, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। मत्ती 48:12-45। यस्सु के जमाना में और आज भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको वक्ती तौर इबलीस की अमलदारी से आज़ादी मिल जाती है। वो खुदा की मोहब्बत नहीं रखते, वो अपनी रोज़मर्रा जिंदगी यस्सु के ताबे नहीं करते, और जब बुरी रूह वापस आती है तो अपने साथ 7 और बुरी रूहें ले आती है जो उस शख्स को पूरी तरह अपने कब्जा में कर लेती हैं। जब कोई रूह यस्सु के जेरे साया आ जाती है तो उसका नई कुव्वत के तसल्लुत में आ जाता है। इस सबब से उसमें वो तब्दीली वाकई होती है जो इंसान की फितरत में फौकुल फितरत उनसुर पैदा कर देता है। जो रूह खुद को यस्सु के सुपद कर देती है, यस्सु उसके लिए मोहकम किला बन जाता है जो दुनिया के हर हमले को पसपा करने की कुदरत रखता है। मगर उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो रूह यस्सु से मदद की तालिब है उस पर यस्सु के अलावा किसी और कुव्वत का कब्जा न हो। हम यस्सु या इबलीस, इन दोनों में से किसी एक के जेरे असर होते हैं। जरूरी नहीं कि हम तारीकी का चुनाव करें, मगर ये उस वक्त खुद बखुद वकू में आ जाएगा जब हम नूर की बादशाही को नजरअंदाज करेंगे। अगर हम आसमानी नुमाइंदा का साथ न देंगे तो तारीकी की फौजें हमारे दिल पर काबिज हो जाएंगी और उसे अपना मस्कन बना लेंगी। हकीकत तो ये कि जब तक कि हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक कायम नहीं रखेंगे, उस वक्त तक इबलीस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बरक्स
उसके गुनाह, खुदगर्जी, खुद सताई हमारा मलजा और मावा बन जाएगा, चुनाचे हमारा पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाएगा। यसु ने मजीद फरमाया, इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा होगा। मत्ती 45:12। सिर्फ वही इतने सख्त दिल होते हैं जो रूहुल कुदुस की तहकीर करते और तौबा करने की इल्तमास को बार बार ठकरा देते हैं। यसु मसीह को रद्द करने का हर कदम निजात और रूहुल कुदुस को ठुकराने का कदम है। यसु मसीह को ठुकराने का हर कदम गुनाह की तरफ बढ़ने का कदम है। यसु को रद्द करने से यहूदी कौम ने नाकाबिले माफी गुनाह का इर्तकाब किया। आज हम भी रहम की दावत को ठुकराकर वही गलती कर सकते हैं, और ये उस वक्त होता है जब हम यसु मसीह के खादमों की नहीं सुनते और इबलीस के शुनवा होते हैं। ऐसा करने से हम निजात दहिंदा की तजलील करते हैं और इबलीस के मजबहा और आसमानी कायनात के रूबरू उसे शर्मसार करते हैं। जो भी ऐसा करता है उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। जब यसु भीड़ से ये कह रहा था, उसके शागिर्द उसके लिए ये पैगाम लाए
कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। वो जानता था कि उनके दिल में क्या है, लिहाजा उसने ये जवाब दिया, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। मत्ती 46:12-50। वो सब जो ईमान से यसू को कबूल करते हैं वो आपस में एक हैं, और उनका ये रिश्ता खानदानी और जिस्मानी रिश्तों से कहीं पुख्ता और नज़दीकी है। वो उसके साथ एक हैं जैसे वो अपने बाप के साथ एक है। उसके कलाम को कबूल करने और उस पर अमल करने की वजह से उसकी माँ जिस्मानी रिश्ते की निस्बत ज्यादा कुर्बत के लायक है। इसी तरह उसके भाइयों को जिस्मानी रिश्ता से कुछ फायदा नहीं जब तक वो उसे पाना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। काश खुदावन यसू मसीह के जिस्मानी रिश्तेदार उस पर ईमान ले आते और खुदा के उस काम में मददगार साबित होते जो यसू मसीह अंजाम दे रहा था। मगर उनकी कम एतकादा ने यसू मसीह की जमीनी जिंदगी पर साया डालकर रोशनी को रोका, और ये उस अफसोसनाक प्याले की तलखी का हिस्सा था जो उसने हमारी खातिर नोश किया। इंजील की खुशखबरी की दुश्मनी इंसानी दिल में पैदा हो गई, जिसकी तासीर यसू मसीह ने बड़े दुख के साथ महसूस की, और खुसूसन उसे ये जानकर रंज हुआ कि ये सब कुछ उसके अपने अजीज रिश्तेदारों और घरवालों की तरफ से शुरू हुआ है। उसके भाइयों की ख्वाहिश थी कि यसू मसीह उनके नक्श कदम पर चले, मगर वो जानता था कि ये सब कुछ इलाही मिशन के मुनाफी है। यसू के भाइयों का ख्याल था कि उसे हमारे मशवरे की जरूरत है। वो उसे इंसानी नुक्ताए नतर से देखते थे। उनकी सोच के मुताबिक यसू मसीह को वैसा ही कलाम करना चाहिए था जो फकीहों और फरेसों के नज़दीक काबिल कबूल हो, न कि वो अपनी तालीम पेश करके मसाइल से दोचार हो। उनकी सोच बड़ी महदूद थी, इसलिए वो उसके मिशन को बिल्कुल न समझ पाए। जाहिर है वो उसकी आजमाइशों में क्यों कर उसका साथ दे सकते थे। उनकी बातों से पता चलता था कि वो जानते ही नहीं जवान के सामने है। वो असल में इंसानी जामा में ज़ाते इलाही है। उन्होंने उसे अक्सर गमजदा देखा था, मगर उसे दिलासा देने की बजाय उनके अल्फाज उसके दिल पर नश्तर का काम करते। उनकी बातों से उसे सख्त रंज पहुंचता, क्योंकि उसके काम को न समझते हुए उसके भाई और दूसरे रिश्तेदार उसके ख्यालात और नीयत को गलत रंग दे देते। उसके भाई फरीसियों के नज़रियात को सराहते थे जो फरसूदा और बोसीदा हो चुके थे। उनका ख्याल कि हमारे शरा के मुअल्लिमों पर हिकमत व फहम के दरवाजे खुलते हैं। उनका यहां तक ख्याल था कि येसु को तमाम सदाकतें और भेद वही समझा सकते हैं। वो खुल्लम खुल्ला येसु के उन कामों और तालीम की मुखालफत करते जो उनकी समझ से बाहर होती। उसके कामों और तालीम की वजह से वो उसे लान तान करते, जिससे उसका दिल चिकना चोर हो जाता। बेशक खुदावन मुजस्सम होकर उनके दरमियान आया था, मगर वो उसे पहचानते न थे। उनकी बातों और मशवरों ने येसु की राह में कांटे बिछा दिए। उसे अपने घर में अपने भाइयों और रिश्तेदारों की वजह से सख्त परेशानी और तकलीफ थी। इसीलिए वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसके ये बेसमझ नातेदार न वहूं। एक घर था जहां वो अपने घर की निस्बत ज्यादा इज्जत, प्यार और आराम पाता था, और वो घर लेजर, मरियम, मार्था का था। उनमें ईमान और मोहब्बत की रूह मौजूद थी। इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं था जो उसके मिशन को समझता, और दुनिया में उनके अलावा और कोई न था जो उसके बोझ को महसूस करता जो वो बनी नौए इंसान के लिए उठाने आया। वो तन्हाई और अपने बाप की रफाकत में सुकून पाता है। वो सब जो येसु मसीह के दुखों में शरीक होने के लिए बुलाते गए हैं और जिन्हें तकालीफ को बर्दाश्त करना है, हत्ता कि जिन्हें उनके घर वाले भी दुख देते हैं, उनके लिए ये बहुत ही तसल्ली बख्श ख्याल है कि उनके आका को भी इन तमाम हालात से गुजरना पड़ा था। खुदावन येसु मसीह का दिल अपने ऐसे खादिमों के लिए भर आता है। ऐसों के लिए उस कहा कि सुकून पाने के लिए आसमानी बाप की सोहबत इख्तियार करें। वो तमाम लोग जिन्होंने खुदावंद येसु को अपना जाती निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, उन्हें वो तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। वो तो उसके आसमानी खानदान के अफराद हैं, वो उसके अपने खून खरीदा है। यकीन कीजिए, वो खुदावंद के दिल के बहुत ही करीब हैं, वो उसका अटूट अंग है, उसे उनसे इंतहाई मोहब्बत है। अपने लोगों के साथ जो येसु का नाता है, वो एक खूबसूरत मिसाल के साथ पेशे खिदमत है। ये मिसाल उस शरीयत में पाई जाती है जो बनी इसराइल को दी गई। जब कोई इब्रानी गरीब हो जाता, उसे अपने बाप के घर को छोड़ना पड़ता और उसे मसीह के गुलामों की जिंदगी बसर करना पड़ती। उसकी मलकियत को छुड़ाने का पहला हक उसके बहुत ही करीबी रिश्तेदार को पहुंचता था।
खुद पढ़िए एबार 25:25, 47, 25:49, रोत 20:2।
इसी तरह जब हम गुनाह के बायस इब्लीस के गुलाम हो गए, तो हमें और हमारी मलकियत को छुड़ाने का हक उसको पहुंचता है जो हमारे वालदें, दोस्त अहबाब और सगे भाइयों से भी ज्यादा अजीज तरीन है, यानी हमारे निजात दहिंदा को। उसका कहना है, खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के इवज में उम्मतें दूंगा। यसाया 1:43-4। खुदावंद यसु मसीह आसमानी मखलूक से मोहब्बत रखता है जो उसके जलाली तख्त को घेरे हुए है, मगर ये समझ से बाला है कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से खुदावन मसीह हम गुनहगारों को चाहता है। बेशक हम उसे समझने से कासिर हैं, ताहम अपने जाती तजुर्बा की बिना पर हम जानते हैं कि ये सच है।